आदित्य राजवंश के ऑस्ट्रेलिया जाने की खबर सुनकर मनाल के चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत आई थी। उसने मन ही मन सोचा, चलिए चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, उससे पीछा तो छूटा। इन दो दिनों में उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे हर सांस में आदित्य की मौजूदगी उसे परेशान कर रही हो। वो थोड़ी देर अकेली रहना चाहती थी, अपने अंदर उठे तूफान को शांत करना चाहती थी। वो जानती थी आदित्य ने अब तक उसके साथ कोई सीमा पार नहीं की थी, मगर वो ये भी जानती थी कि जब वो लौटेगा तो उस पर अपने सारे अधूरे अरमान पूरे करने की कोशिश करेगा। उसने मेरी मदद इसलिए की थी ताकि मुझे पा सके, यही ख्याल उसे सबसे ज्यादा डराता था। रात के सन्नाटे में वो बहुत देर तक करवटें बदलती रही, सोचती रही जब आदित्य मुझे छुएगा तब मुझे कैसा लगेगा। उसकी सोच वहीं घूमती रही, अगर कॉलेज के दिनों में वो मुझे पा लेता तो शायद आज मुझसे शादी ना करता। अब जब उस वक्त नहीं कर सका तो सब कुछ पूरा करने की जल्दबाजी में है। रात इसी उधेड़बुन में बीती और नींद कब आई उसे खुद भी नहीं पता चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। आंखें भारी थीं, सिर बोझिल। वो बिस्तर से उठके हुए बड़बड़ाई, सारी रात आदित्य को कोसते हुए सोई हूँ, नींद क्या खाक आएगी। किसी तरह उठकर वो बाथरूम चली गई। उधर उसका फ़ोन बार बार बजने लगा। उसने सोचा शायद माँ का कॉल होगा, शादी के बाद से उससे ठीक से बात नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही बाहर आकर फ़ोन देखा, फिर से आदित्य। उसका मन एक पल को किया कि फ़ोन उठाकर दीवार से दे मारे। कल ही तो गया है, फिर इतनी सुबह फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उसे और कोई काम नहीं है सिवाय मुझे परेशान करने के? वो लंबे समय तक फ़ोन की स्क्रीन को घूरती रही, फिर अनिच्छा से कॉल उठा ही लिया। फ़ोन उठाते ही आदित्य की आवाज़ आई, क्या बात है बीवी, फ़ोन उठाने में इतना टाइम लग गया? मुझे तो लगा तुम मेरी याद में रात भर सोई ही नहीं होगी। मनाल ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ माना, कहाँ खो गई? आदित्य फिर बोला। माना, ये शब्द सुनते ही मनाल और चिढ़ गई। वो जानती थी ये नाम सिर्फ वही लोग लेते थे जिनसे वो बेहद जुड़ी होती थीं, और वो नहीं चाहती थी कि आदित्य भी उन लोगों की लिस्ट में आए। वो रूखे स्वर में बोली, कहिए किस लिए फ़ोन किया, कोई ज़रूरी बात थी? और क्या, मुझे लगा तुम्हें मेरी याद आ रही होगी, मैंने सोचा चलो तुम्हें अपनी आवाज़ सुना दूँ। आम बीवियाँ तो पति का जीना हराम कर देती हैं, बार बार कॉल करके पूछती हैं क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, और तुम हो कि एक कॉल भी नहीं किया। अभी अभी हमारी शादी हुई है और तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं कर रही हो। मनाल खामोश रही। तुम्हें रात मेरे बिना नींद तो आई ना माना, आदित्य की आवाज़ में शरारत थी। मनाल मन ही मन सोच रही थी, हाँ आई, और बहुत चैन की नींद आई क्योंकि तू नहीं था। लेकिन ये सब वो कह नहीं सकती थी। वो चाहती थी कि बातचीत जल्द से जल्द खत्म हो। फिर आखिरकार बोली, आप ठीक से पहुंच गए? आदित्य ने सवाल दोहराया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या मेरी याद आई? मनाल चुपचाप फ़ोन कान से लगाए खड़ी रही। आदित्य की बातें उसके जहन में गूंजती रहीं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कह सकी। वो सोच रही थी, जब अभी वो दूर है और मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है तो जब वापस आएगा तब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी, किससे मदद मांगूंगी? आदित्य ने हंसते हुए कहा, ठीक है माना, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया था। जल्दी आ जाऊँगा, तब तक मुझे ज़्यादा याद मत करना। फ़ोन कट गया। फ़ोन कटते ही जैसे मनाल की जान में जान आई, शुक्र है कुछ देर को ही सही, मगर पीछा तो छूटा। उसने गहरी सांस ली और टावल उठाकर बाथरूम की ओर चल दी। शावर के नीचे खड़ी होकर मनाल काफ़ी देर तक खुद को शांत करती रही। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके चेहरे की परेशानी पड़ सके। आज उसका ससुराल में दूसरा दिन था और वो एक आदर्श बहू की तरह व्यवहार करना चाहती थी। अगर मुझे यहीं रहना है तो सम्मान से रहना होगा। उसने एक हल्की सी साड़ी निकाली और पहन ली, बाल बांधे, सिंपल मेकअप किया और नीचे चली गई। भाग चार, एक नया परिवार। जैसे ही वो नीचे पहुंची, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, गुड मॉर्निंग डैडी जी, धर्मपाल जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, गुड मॉर्निंग, हमारे पास बैठो। उन्होंने साथ वाली कुश्ती की ओर इशारा किया। मनाल वहीं बैठ गई। लड़के और लड़कियों में यही फ़र्क होता है, धर्मपाल जी बोले, लड़कियां माँ बाप के पास बैठती हैं और लड़के दूर दूर भागते हैं। जब निशा घर पर होती है तो सुबह की चाय हमारे साथ पीती है, मगर हमारे दोनों नालायक बेटे तो कभी नज़र ही नहीं आते। मनाल हंस पड़ी, उसे धर्मपाल जी की बातें एक सच्चे पिता जैसी लगीं। बेटा, जैसे आदित्य मेरे लिए है वैसे ही तुम भी हो, इस घर की बहू नहीं मेरी बेटी हो। मनाल का गला भर आया, छोटा सा जवाब दिया, जी डैड। दीपा जी भी उसे बहुत प्यार से देख रही थीं। बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, आदित्य घर में हो या ना हो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कभी किसी बात से अनकंफर्टेबल महसूस मत करना। इन प्यार भरे शब्दों से मनाल को सुकून मिला। काश आदित्य भी ऐसा ही होता, उसने मन ही मन सोचा। उसी समय अधिराज वहां आ गया, हंसते हुए बोला, गुड मॉर्निंग भाभी, आपको भाई के बिना नींद आ गई थी ना, चेहरा तो बता रहा है कि सारी रात करवटें बदलती रहीं। कोई बात नहीं, भैया जल्दी ही आ जाएंगे, वैसे तो वो आपको एक मिनट के लिए भी दूर नहीं करना चाहते थे। मनाल मुस्कुरा दी मगर जवाब में कुछ नहीं बोली। भैया तो शादी के नाम से ही भागते थे, लेकिन जब आपकी बात आई तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया, इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया उन्होंने। अधिराज की बातें हल्की फुल्की थीं, मगर मनाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने बात बदलने के लिए पूछा, नैना और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? अभी तक उठे नहीं, कल रात रिसेप्शन में काफ़ी देर हो गई थी, बच्चे भी थक गए हैं, आज स्कूल भी नहीं जाना था, दीपा जी ने बताया।
चाय पीते हुए मनाल ने दीपा जी से कहा, मम्मी जी मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। हाँ बेटा बोलो, इसमें परमिशन की क्या बात है, जो कहना है खुलकर कहो।